Iran Radio Podcast। दोस्तों, जो पॉडकास्ट आप सुन रहे हैं वो ईरान रेडियो द्वारा तैयार किया गया है। अगर आप दूसरे विषयों पर भी पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट iranradio.ir/hi पर सुन सकते हैं।
۱۸۳۰ में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति ने कांग्रेस से एक नया कानून पारित करवाया। इस कानून के तहत सभी रेड इंडियंस को मिसिसिपी रिवर के पूरब में पलायन करना था। इस तरह से रिवर का पूर्वी हिस्सा हमेशा के लिए रेड इंडियंस का हो जाता और गोरों को वहां जाने की अनुमति नहीं होती। दोस्तों, दुनिया के इतिहास पर पॉडकास्ट का ये 17वां एपिसोड है। ईरान रेडियो से मैं हूं अहमद अब्बास, आप सभी को मेरा सलाम। क्रीक कबीले के सरदार ने अपने 100 साल के जीवन में देखा था कि गोरों ने किस तरह अमेरिका के पूर्वी तटों की ओर प्रगति की थी, और उसे ये भी अच्छी तरह से याद था कि रेड इंडियंस ने धीरे धीरे अपने कदम पीछे खींचे थे और एक एक करके अपने सभी इलाकों से हाथ धो बैठे थे। सरदार को गोरों के साथ होने वाले समझौते और सीमाएं भी याद थीं जिन्हें उन्होंने अपने पैरों तले रौंद दिया था। उसने अपने कबीले वालों से कहा, भाइयों, मैंने अपने दादा के कई भाषण सुने हैं। जब उन्होंने पहली बार विशाल जल क्षेत्र को पार किया तो वो एक छोटे से आदमी थे, बहुत छोटे से। लंबे समय से नाव में बैठने के कारण उनकी टांगें अकड़ गई थी। वो एक छोटी सी जमीन का आग्रह कर रहे थे जिस पर आग जला सकें, लेकिन जब उन्होंने रेड इंडियंस की आग पर अपने हाथ तापे और उनके मक्के के आटे से अपना पेट भर लिया तो वो बहुत बड़े हो गए। उन्होंने एक ही कदम में पर्वतों को पीछे छोड़ा और घाटियों और जंगलों को पार कर लिया। अपने हाथों को पूरब और पश्चिम के समुद्रों की ओर फैलाया। रेड इंडियंस कबीलों को या तो अनुबंध पर हस्ताक्षर करके या बलपूर्वक मिसिसिपी नदी के दूसरी ओर भेज दिया गया, लेकिन सरकार एक कबीले को स्थानांतरित करने की जल्दी में थी। उसका नाम था चेरोकी। जहाँ ये कबीला बसता था वहाँ की ज़मीन में सोना था, इसलिए उन्हें जल्दी ही वहाँ से जाना पड़ा। राष्ट्रपति ने तुरंत जनरल स्कॉट को चेरोकी के क्षेत्र में डेरा डालने और कबीले के लोगों को तेज़ी से पश्चिम की ओर चले जाने के लिए मजबूर करने का आदेश दिया। स्कॉट 5,000 सैनिकों और 4,000 गोरे स्वयं सेवकों के साथ चेरोकीज़ के पास गया। सर्दी का मौसम था और कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, लेकिन स्कॉट को राष्ट्रपति के आदेशों का पालन करना था। रेड इंडियंस को पलायन के लिए बसंत तक की प्रतीक्षा करने की अनुमति नहीं थी। स्कॉट ने रेड इंडियंस को राष्ट्रपति का आदेश सुनाने के लिए इकट्ठा किया। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने आपको पूर्ण समृद्धि में रहने के लिए मिसिसिपी नदी पार करने का आदेश दिया है। इस आदेश के पालन के लिए उन्होंने मुझे एक मजबूत सेना के साथ भेजा है। पूर्णिमा समाप्त होने से पहले आप सभी को पश्चिम की ओर कूच करना होगा। जनरल ने कहा कि मेरे सैनिक आप लोगों की हर हरकत पर कड़ी नजर रखे हुए हैं और हजारों बंदूकधारी हर तरह के विरोध या विद्रोह को कुचलने के लिए इस तरफ बढ़ रहे हैं। क्या आप विद्रोह करने और हमें हथियार उठाने के लिए मजबूर करना चाहते हैं? ईश्वर ना करे ऐसा हो। चेरोकी कपकपाती ठंड में सोने की खोज करने वालों के लिए मैदान छोड़कर वहां से निकल पड़े। बर्फ से ढके पहाड़ों और घाटियों में सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलने से कई रेड इंडियंस, खासतौर पर महिलाएं और बच्चे, रास्ते में ही दम तोड़ गए। 7,000 चेरोकीज में से 4,000 इस भयानक पलायन में अपनी जान से हाथ धो बैठे। जब वे मिसिसिपी नदी पर पहुंचे तो नदी आधी जमी हुई थी और नदी के उस पार से गुजरने वाली नावों के लिए पानी पर तैरती बर्फ बहुत खतरनाक थी। उनके रहने के लिए जो जगह निर्धारित की गई थी वो नदी के पूर्व में नहीं बल्कि उसके पश्चिम में थी। रेड इंडियंस इस जानलेवा पलायन के बाद बुरी तरह थक चुके थे। नदी के किनारे पहुंचकर वे नावों में बैठे और पश्चिमी तट की ओर चल पड़े। तैरती हुई बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े नाव से टकराए और उनमें से कुछ नावें पलट गईं। अब कुछ बचे खुचे लोग मिसिसिपी के पानी में जम गए। अब भाग्य से जो लोग बच गए थे वे पश्चिमी तट पर उतरे। मिसिसिपी की धीमी धारा रेड इंडियंस की लाशों को बहाते हुए बहुत दूर ले गई। चेरोकीज ने वर्षों इस पलायन का दर्द और इसकी पीड़ा झेली जिसे वे कभी नहीं भुला सके। इस पलायन के लिए उन्होंने मार्च ऑफ टीयर्स का नाम चुना था। उन दिनों संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने कांग्रेस में भाषण देते हुए कहा था, चेरोकीज को उनकी नई भूमि पर पूर्ण रूप से स्थानांतरित करने की घोषणा करते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। इस कदम के सर्वोत्तम परिणाम हासिल हुए हैं। 1948 में फिलिस्तीनियों की आधी से ज्यादा आबादी को उनके घर बार से उजाड़ दिया गया और उन्हें अपना वतन छोड़ने पर मजबूर किया गया। उसके बाद 20 साल के दौरान करीब 10 लाख यहूदियों को उनकी जगह पर लाकर बसाया और फिलिस्तीनियों के 78% जमीन को हड़प लिया गया। उसके बाद से आज तक कब्जा किए जाने वाले इलाकों में गैर कानूनी बस्तियों का निर्माण जारी है। रेड इंडियंस अमेरिका के श्वेत सरकार के फरमान का पालन करते हुए मिसिसिपी नदी के पश्चिम की ओर चले गए, लेकिन वहां भी उन्हें शांतिपूर्ण जीवन नसीब नहीं हो सका। रेड इंडियंस के जबरन प्लान के सिर्फ 10 साल बाद कैलिफोर्निया में सोना पाया गया और कुछ ही महीनों के भीतर हजारों गोरों ने रेड इंडियंस की भूमि में सोने की खोज के लिए नदी पार की। जब अमेरिकी सरकार को रेड इंडियंस के विरोध का सामना करना पड़ा तो उसने एक बयान जारी किया, नियति और भाग्य ने यही तय किया है कि यूरोपीय और उनके वंशज पूरे अमेरिकी महाद्वीप पर शासन करें। वे श्रेष्ठ और विजयी जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं और जंगलों को बनाए रखने और उन क्षेत्रों में छिपे धन को बाहर लाने की जिम्मेदारी उन पर है। ये नस्लवादी घोषणा की जिसे प्रशंसा की घोषणा का नाम दिया गया था, उन कबीलों के सरदारों को अमेरिकी सरकार का जवाब था जिन्होंने गोरों पर समझौता तोड़ने का आरोप लगाया था। इससे पहले अमेरिका में 31 राज्य थे, लेकिन कोलोराडो के पहाड़ों में सोने की खोज के साथ रेड इंडियंस की भूमि पर कंसास और नेब्रास्का राज्यों का भी गठन किया गया। 1948 यानी प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के लगभग 30 साल बाद ब्रिटिश सरकार ने ज़ायनी यहूदियों की फिलिस्तीन पर कब्जा करने में मदद की। उसी वर्ष ज़ायनियों ने 34 नरसंहार किए, जिनमें सबसे प्रसिद्ध देर यासीन नरसंहार है। इस नरसंहार में 254 लोग, पुरुष और महिलाएं, बूढ़े और जवान, बहुत ही क्रूरता से शहीद किए गए। 1956 में खान यूनुस नरसंहार में 250 फिलिस्तीनी मारे गए और 1982 में सबरा और शतीला शिविरों में 3000 से अधिक फिलिस्तीनी महिलाओं और बच्चों को मार डाला गया। इसके बाद उनकी ज़मीनें और घर दूसरे देशों से आने वाले ज़ायनियों को सौंप दिए गए। रेड इंडियंस के साथ युद्ध अमरीकी सरकार के लिए इतना आसान भी नहीं था। रेड इंडियंस ने बदले में गोरों के क्षेत्रों को असुरक्षित बना दिया था। उन्होंने उनके घर लूट लिए और कई गोरों को बंधक बना लिया। अमेरिकियों ने इन खतरों को कम करने के लिए एक नया समाधान ढूंढ लिया। सरकार रेड इंडियंस की मदद का ऐलान करती है और उन्हें भोजन और धन उपलब्ध कराने का वादा करती है, लेकिन इसके बदले में उन्हें अपनी ज़मीन छोड़नी होगी और बंद शिविरों में खेती करनी होगी। रेड इंडियंस ने वार्षिक भत्ता हासिल करने के लिए अपनी ज़मीनों को गोरे अमरीकियों को सौंप दिया। हालांकि रेड इंडियंस को गोरों के सभी वादों और अनुबंधों पर संदेह था, लेकिन इन अनुबंधों की गारंटी और उन पर हस्ताक्षर अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा किए गए थे। रेड इंडियंस राष्ट्रपति को गॉडफादर मानते थे। कुछ रेड इंडियंस कबीलों ने, कि जो युद्ध से थक चुके थे और अब पहले की तरह विशाल मैदानों में आज़ादी से शिकार की आशा खो चुके थे, एक प्रावधान स्वीकार कर लिया जिसके तहत उन्हें छोटे छोटे शिविरों में सीमित कर दिया गया जहां वे अपनी भूमि पर मक्के की खेती कर सकते थे। मेडुकैंथन कबीले के पुराने सरदार जागचे उन रेड इंडियंस में से एक थे जिन्होंने गोरों के साथ इस तरह के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। गोरे लोग एक बार जागचे को राष्ट्रपति या सभी के गॉडफादर से मिलवाने के लिए वॉशिंगटन भी ले गए। इस यात्रा के दौरान जागचे ने अपनी पारंपरिक वेशभूषा बदलकर तांबे के बटन वाला नीला सूट पहन लिया, चर्च गए और ईसाई बन गए। जब वो शिविर में लौटे तो उन्होंने गोरों की तरह एक घर बनाया और अपने परिवार को तंबू से निकालकर इस घर में बसा दिया। इस तरह से उन्होंने आदिवासी जीवन को त्याग कर गोरों की तरह सभ्य बनने का प्रयास किया। 1862 की गर्मियों में मेडुकैंथन कबीले के खेतों की फसलें अच्छी नहीं थीं। रेड इंडियंस को गोरे व्यापारियों से किराने का सामान खरीदना पड़ता था, लेकिन सरकार को उन्हें वार्षिक भत्ता देने में देरी हुई। जागचे और उसके हजारों समर्थक जिले के केंद्र में एकत्रित हुए और भूख हड़ताल पर बैठ गए। उन्हें सूचित किया गया कि कांग्रेस ने इस वर्ष के लिए कोई धन आवंटित नहीं किया है। जागचे ने सरकारी अधिकारियों से कहा, कांग्रेस से कोई पैसा नहीं मिला है, लेकिन आपके गोदाम भोजन से भरे हुए हैं और हमारे लोग भूख से मर रहे हैं। सरकारी अधिकारी ने खेद जताते हुए कहा कि जब तक पैसा नहीं मिलेगा हम आपको कुछ नहीं दे सकते। जागचे क्रोधित हो गया और उसने कहा, यह पैसा हमारा अधिकार है, हमने लंबे समय तक इंतजार किया, आप गोदामों से हमें अनाज दे सकते हैं और पैसा मिलने पर उसकी कीमत दे सकते हैं। हम भूखे हैं और जब कोई व्यक्ति भूखा होता है तो वो अपना भोजन पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। जागचे का उत्तर देने के बजाय अधिकारी गोरे व्यापारियों की ओर मुड़े और कहा, आप क्या सोचते हैं? व्यापारियों में से एक ने कहा, अगर आप मेरी राय पूछें तो मेरा मानना है कि अगर ये लोग भूखे हैं तो उन्हें घास खानी चाहिए। इस जवाब से चारों ओर सन्नाटा फैल गया और एक पल के लिए वक्त ठहर सा गया। रेड इंडियंस ने जो कुछ सुना उस पर उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। जागचे ने क्रोधित चेहरे से गोरे व्यापारियों की ओर देखा और फिर अपने आदिवासी साथियों की नजरों से बचने की कोशिश करते हुए अपने घोड़े पर बैठ गया और वहां से चला गया। अब आदिवासियों ने जागचे पर देशद्रोह का आरोप लगाया। उन्होंने अनुबंध पर हस्ताक्षर करके कबीले की जमीनें गोरों को सौंप दी थीं और बदले में उन्हें अपमान के अलावा कुछ भी हासिल नहीं हुआ था। यह अपमान देखकर कबीले के युवा युद्ध के लिए तैयार हो गए। लोगों ने जागचे पर देशद्रोह और कायरता का आरोप लगाया। जागचे का मानना था कि श्वेतों के खिलाफ युद्ध बेकार है और इसमें कुछ हासिल होने वाला नहीं है। उसने कबीले के युवाओं को शांत करने की बड़ी कोशिश की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका। आखिरकार उसने आक्रमण का आदेश दे दिया। जिस व्यापारी ने रेड इंडियंस को घास खाने के लिए कहा था वो सबसे पहले मारे जाने वालों में से एक था। उसका शव सड़क के बीच में पड़ा था जबकि रेड इंडियंस ने उसके मुंह में घास भर दी थी। आदिवासियों ने गोदामों को लूट लिया और खाली इमारतों में आग लगा दी और अपने साथ बंदियों को लेकर मिनेसोटा की घाटियों में चले गए। कुछ समय बाद खबर आई कि 1400 सैनिकों के साथ मिनेसोटा रेजिमेंट रेड इंडियंस से लड़ने के लिए केंद्र से निकल पड़ी है। सैन्य बल मिनेसोटा की एक घाटी में जागचे कबीले तक पहुंच गए। कबीले के एक समूह का मानना था कि उन्हें बंदियों को रिहा कर देना चाहिए। जागचे बंधकों की रिहाई के खिलाफ था, लेकिन इन लोगों ने उसकी जानकारी के बिना रात में बंदियों को रिहा कर दिया। अगली सुबह रेड इंडियंस श्वेतों की तोपों की गरज से जागे। कबीले के लड़ाकों को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें मिनेसोटा सेंट्रल जेल ले जाया गया। अदालत ने कबीले के 38 लोगों को हत्या का दोषी पाया और उन्हें मौत की सजा सुनाई। जागचे का सिर भी उसके शरीर से अलग कर दिया गया। गोरों ने उसके सिर को मध्य मिनेसोटा के एक चौराहे पर टांग दिया।